अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज जो हम आपको कहानी सुना रहे हैं उसका उन्वान है मौत थैले के अंदर। बहुत दिन गुजरे, ज़ार के फौज में एक सिपाही था। इसका नाम हाशिम था। इसने 30 साल तक मुल्क की खिदमत सर अंजाम दी। आखिर एक दिन उसे मुलाजमत से अलग कर दिया गया, क्योंकि अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं रही थी। उन दिनों फौजियों को मुलाजमत से अलहदा करते वक्त कोई तनख्वाह नहीं दी जाती थी। जब किसी फौज को मुलाजमत से निकाला जाता, उसे सिर्फ 2 रोटियां दी जाती। हाशिम को भी फौजी मुलाजमत से अलहदगी के बाद 2 रोटियां दी गईं। वो पैदल ही अपने गांव की तरफ चला। रास्ते में एक फ़कीर मिला। इसने कहा, अल्लाह के नाम पर बेटा, मुझे कुछ खाने को दो, मैं 2 रोज़ से भूखा हूँ। हाशिम को फ़कीर की ख़राब व खस्ता हालत देखकर बहुत रहम आ गया। इसने ये 2 रोटियां उसे दे दी। जब फ़कीर खाना खा चुका तो उसने कहा, तुम बहुत हमदर्द हो, तुमने खुद भूखा रहना गवारा कर लिया और अपना खाना मुझे खिला दिया। इसी नेकी के सिले में मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ये कहकर उसने एक थैला हाशिम को दिया। वो बोला, जब तुम किसी चीज़ को हुक्म दोगे के थैले के अंदर चलो, तो वो इसी वक्त थैले में चली जाएगी। फिर इसने जेब से एक साफ शफाफ शीशा निकाला और कहा, जब कोई शख्स बीमार हो तो उसका चेहरा इस शीशे में देखना। अगर तुम्हें इसमें मौत का अक्स दिखाई दे तो समझ लेना कि ये मरीज़ ज़िंदा ना बच सकेगा। हाशिम ने फ़कीर का शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते पर चलने लगा। इसके कंधे पर थैला लटका हुआ था। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं उसका उन्वान है मौत थैले के अंदर। बहुत दिन गुजरे, ज़ार के फौज में एक सिपाही था। इसका नाम हाशिम था। इसने 30 साल तक मुल्क की खिदमत सर अंजाम दी। आखिर एक दिन उसे मुलाजमत से अलहदा कर दिया गया, क्योंकि अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं रही थी। उन दिनों फौजियों को मुलाजमत से अलहदा करते वक्त कोई तनख्वाह नहीं दी जाती थी। जब किसी फौजी को मुलाजमत से निकाला जाता, उसे सिर्फ 2 रोटियां दी जाती। हाशिम को भी फौजी मुलाजमत से अलहदगी के बाद 2 रोटियां दी गईं। वो पैदल ही अपने गांव की तरफ चला। रास्ते में एक फ़कीर मिला। उसने कहा, अल्लाह के नाम पर बेटा, मुझे कुछ खाने को दो, मैं 2 रोज़ से भूखा हूँ। हाशिम को फ़कीर की ख़राब और ख़स्ता हालत देखकर बहुत रहम आया। उसने उसे दोनों रोटियां दे दी। जब फ़कीर खाना खा चुका तो उसने कहा, तुम बहुत हमदर्द हो, तुमने खुद भूखा रहना गवारा कर लिया और अपना खाना मुझे खिला दिया। इसी नेकी के सिले में मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ये कहकर उसने एक थैला हाशिम को दिया। वो बोला, जब तुम किसी चीज़ को हुक्म दोगे कि थैले के अंदर चलो, वो इसी वक्त थैले में चली जाएगी। फिर उसने जेब से एक साफ शफाफ शीशा निकाला और कहा, जब कोई शख्स बीमार हो तो तुम इसका चेहरा इस शीशे में देखना। अगर तुम्हें इसमें मौत का अक्स दिखाई दे तो समझ लेना कि ये मरीज़ जिंदा ना बच सकेगा। हाशिम ने फ़कीर का शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते पर चलने लगा। इसके कंधे पर थैला लटका हुआ था और जेब में शीशा था। वो चलता रहा यहाँ तक कि रात हो गई। इसने एक दरख्त पर जंगली मुर्ग बैठे हुए देखे। इसने उसके ऊपर देखा, ये कुल 9 जंगली मुर्ग थे। हाशिम ने थैला खोला और मुर्गों की तरफ इशारा करके बोला, चलो थैले के अंदर। ये 9 के 9 मुर्ग उड़ते हुए आए और थैले में दाखिल हो गए। हाशिम ने थैले का मुंह मजबूती से बंद कर दिया और आगे चल दिया। वो एक गांव के पास सराय में पहुंचा और सराय वाली से बोला, बीबी, क्या तुम इन मुर्गियों के बदले मुझे एक रात सराय में बसर करने दोगी? सराय वाली ने मुर्गियों को तोल कर देखा। फिर इसने हाशिम को रहने के लिए कमरा दे दिया और रात के खाने का और सुबह के नाश्ते का भी इंतज़ाम कर दिया। अगले दिन वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। इसने रास्ते में एक वीरान हवेली देखी। इसके आसपास बहुत लंबी लंबी घास उगी हुई थी। जंगली बेलें, दीवारें और दीवारों पर छाई हुई थी। हवेली पर एक अजीब पुरसरार खामोशी छाई हुई थी। यूँ लगता था कि जैसे ये हवेली बहुत दिनों से वीरान पड़ी है। हाशिम ने एक लड़के से पूछा, मियाँ साहब ज़ादे, इस मकान में कौन रहता है? लड़के ने कहा, जनाब जब से ये हवेली बनी है तब से ही ये खाली पड़ी हुई है। लोग इसे भूत बंगला कहते हैं क्योंकि यहाँ भूत रहते हैं। जो शख्स यहाँ रात गुजारना चाहे उसे ये भूत बहुत डराते हैं। अक्सर लोग खौफ और दहशत की वजह से मर जाते हैं। जो खुश नसीब जिंदा बच्चे रहते हैं वो कानों को हाथ लगाते हैं और ऐसे भागते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखते। हाशिम बोला, मियाँ इंसान से ज़्यादा बड़ा भूत और कौन हो सकता है? इसमें मैं भी एक रात यहाँ गुजारना चाहता हूँ। मैंने ज़िंदगी में पहले कभी भूत नहीं देखे। लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन हाशिम ना माना। आखिर हवेली के मालिक ने उसे हवेली में एक रात बसर करने की इजाज़त दे दी। रात के वक्त हाशिम ने आतिशदान में आग सुलगाई। वो बहुत देर तक सिगार पीता रहा। आखिर वो बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। रात के 12 बजे का वक्त था कि अचानक एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। फिर कोई ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। कुछ देर के बाद कुंडी खुद ब खुद खुल गई और तीन भूतने नाचते कूदते हुए कमरे में दाखिल हुए। हाशिम भी उठकर बैठ गया और दिलचस्पी से भूतों का नाच देखने लगा। एक भूत ने कहा, पूछा, क्या तुम्हें हमसे डर तो नहीं लग रहा? हाशिम बोला, मैं सिपाही हूँ और सिपाही डरा नहीं करते। तीनों भूत हाशिम के पास बैठ गए। एक भूत ने अपनी चीखती आवाज़ में बोला, क्या तुम हमारे साथ ताश खेलना पसंद करोगे? हाशिम बोला, आओ बैठ जाओ, तुम भी क्या याद करोगे कि किसी इंसान से पाला पड़ा था। वो ताश खेलने लगे। हाशिम हर बार बाजी जीत जाता। भूतों का गुस्से से बुरा हाल हो गया। वो हाशिम को डराने धमकाने लगे। उन्होंने तलवारें निकाली और हाशिम को कत्ल करने की धमकियां देने लगे। आखिर तंग आकर हाशिम ने अपना थैला निकाला और बोला, चलो इसके अंदर। और तीनों शैतान भूतने गड़प से थैले के अंदर जा गिरे। हाशिम ने मजबूती से थैले का मुंह बंद कर दिया और एक तरफ रख दिया और बिस्तर पर लेटकर मज़े की नींद सोने लगा। अगली सुबह जब लोग आए तो उन्होंने देखा कि हाशिम अपने बिस्तर पर बैठा हुआ सिगार पी रहा है। उसने इन्हें गुज़श्ता रात का वाक़या सुनाया और इन्हें भूतों से भरा हुआ थैला दिखाया और कहने लगा, अब ये भूतने तुम्हें कभी तक नहीं करेंगे। मालिक के मकान ने हाशिम का शुक्रिया अदा किया और 1000 वेबल का इनाम भी दिया। वहाँ से रुखसत होकर हाशिम एक लोहार के पास पहुँचा और बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम दिन भर इस थैले में हथौड़े बरसाओ। मैं तुम्हें इस काम का माकूल मुआवजा दूंगा। ये कहकर इसने 1000 वेबल लोहार के हाथ पर रख दिए। लोहार थैले पर हथौड़े बरसाने लगा। हर चोट पर भूतों की चीखें निकलती। जब भूतों का चकना कचूमर निकल चुका तो हाशिम ने ज़ोर से कहा, अगर तुम थैले से बाहर निकलना चाहते हो तो मुझे अशर्फियाँ दो। भूतों ने हाशिम की बात मान ली। उन्होंने हाशिम के कदमों में अशर्फियों का ढेर लगा दिया। तब हाशिम ने कहा, अब तुम यहाँ से तफान हो जाओ। खबरदार, अगर मैंने तुम्हें इधर या उधर घूमते फिरते देख लिया तो तुम्हारा हशर खराब कर दूंगा। भूत तो ऐसे बदहवास होकर भागे कि उन्होंने पीछे मुड़कर भी देखना गवारा ना किया। वो सोचते होंगे कि ये तो हमसे भी बड़ा भूत निकला। हाशिम के पास बहुत दौलत जमा हो गई थी। उसने ज़मीन खरीदी और खेती बाड़ी करने लगा। इसके साथ साथ वो लोगों का इलाज भी करता था। वो शीशे में मरीज़ों की सूरत देखता, फिर मरीज़ों के चेहरे पर मौत की परछाइयाँ नज़र आती, वो इनका इलाज करने से इनकार कर देता। जब मरीज़ के चेहरे पर मौत का अक्स नज़र ना आता तो वो उन्हें एक शीशे में गुलाब का अर्क भर कर देता। मरीज़ कुछ ही दिनों में भला चंगा हो जाता। इसी तरह बहुत दिन गुजर गए। इसके खेतों में काम करने वाले किसान बूढ़े हो गए। इनकी जगह उनके जवान बेटों ने ले ली। हाशिम भी अब बूढ़ा हो गया था। वो भी दिन भर बिस्तर पर लेटा रहता। एक दिन हाशिम बहुत बीमार हो गया। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा, उस पर मौत का साया नजर आ रहा था। हाशिम ने कहा, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे बहुत से काम करने हैं। उसने थैले का मुंह खोला और मौत को हुक्म दिया, चलो थैले के अंदर। और मौत गड़प से थैले के अंदर जा गिरी। हाशिम ने थैले का मुंह मजबूती से बंद कर दिया और उसे आतिशदान के ऊपर लटका दिया। उसकी बीमारी दूर हो गई और वो भला चंगा हो गया। इस वाक्य को बहुत साल गुजर गए। जो बच्चे थे जवान हो गए और जो जवान थे वो बूढ़े हो गए और काम काज करने के काबिल ना रहे। लेकिन अजीब बात यह हुई कि इस अरसे में कोई शख्स ना तो बीमार हुआ और ना मरा। हाशिम भी बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसके जिस्म में भी तवानाई बाकी नहीं रही थी। वो दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता और हुक्का पीता रहता। इसने कहीं आना जाना भी छोड़ दिया था। एक दिन इसने सोचा कि गांव की सैर करनी चाहिए, पुराने दोस्तों से मिलना चाहिए, इनके साथ गपशप में अच्छा वक्त गुजर जाएगा। वो सड़क के किनारे किनारे चलने लगा। अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया। इसने ज़िंदगी में इतना बूढ़ा शख्स कभी नहीं देखा था। इसके चेहरे पर बेशुमार झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, आँखें अंदर को धंसी हुई थी, सर के बाल दूध या सफ़ेद हो चुके थे, कमर झुककर कमान हो गई थी, चलते हुए इसकी नाक उसके घुटनों को छूती थी। हाशिम ने इससे कहा, आदाब बड़े मियाँ, कैसे हैं, कैसे मिजाज हैं? बूढ़ा शख्स बहुत कमज़ोर धीमी आवाज़ में बोला, बेटा मेरा बहुत बुरा हाल है, कमज़ोरी और बुढ़ापे की वजह से ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है। हाशिम ने कहा, दादा आपकी उम्र क्या होगी? वो बोले, आइंदा माह मैं 150 बरस का हो जाऊंगा। मेरी बूढ़ी हड्डियां अब आराम करना चाहती हैं, मगर अफसोस मैं मर नहीं सकता। हाशिम ने हैरान होकर पूछा, दादा क्या आप मरना चाहते हैं? वो बोले, हाँ बेटा, मौत भी इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। इसी ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि इंसान में चलने फिरने की सकत भी ना बाकी रहे। हाशिम ने पूछा, दादा आप मरते क्यों नहीं? वो बोले, बेटा मैंने सुना है कि किसी अहमक शख्स ने मौत को कैद कर लिया है। गुज़श्ता 50 बरस से कोई शख्स नहीं मरा। तुम जानते हो कि ये बात फितरत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला के तमाम कामों में हिकमत पोशीदा है। जब हाशिम घर पहुंचा तो वो अजीब कश्मकश में मुब्तला था। बहुत देर तक सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर मौत भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आखिर इसने चाकू से थैले के मुंह पर बंधी हुई रस्सी काट दी और मौत को आज़ाद कर दिया। अगले ही लम्हे मौत ने उसे ज़िंदगी के बंधन से आज़ाद कर दिया। हमें फितरत के ख़िलाफ़ चलना नहीं चाहिए। हर चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं होती और हम हर चीज़ अपने इख्तियार में रहना चाहते हैं। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हर चीज़ अल्लाह के ही इख्तियार में है, और जो अल्लाह के इख्तियार में है उसे हम अपने इख्तियार में लाते हैं तो माशरे में इंतशार पैदा होता है और यही बिगाड़ पैदा होता है कि लोगों की ज़िंदगियाँ रुक जाती हैं, लोगों के बहुत से मसाइल होते हैं जो वो हल नहीं हो पाते, क्योंकि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं आजकल, और हर ज़िंदगी में अपने चलाना चाहते हैं और अल्लाह ताला के कामों में भी मदाखलत करते हैं कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी अल्लाह के कामों को अल्लाह पे छोड़ दें और अपने काम सीधे करें, रब को राज़ी करें। शुक्रिया।